देखिए, अगर हम लोग ग्रुप्स की बात करते हैं, समूह, तो समूह से ही पहला मतलब ये है कि जब हम जिस दिन हम पैदा हो गए उसी दिन हम समूह में आ गए, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम एक फैमिली में आते हैं, तो फैमिली एक हमारा ग्रुप है. फिर हमारी इंटरेक्शंस होती है अपने नेबर्स के साथ जब हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम लोग ग्रुप बनाते हैं, फिर हम किस स्कूल में जा रहे हैं, किन लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, हमारा पीयर ग्रुप है, क्लास में 10 बच्चे हैं तो हम 2 के साथ ही रहते हैं या 3 के साथ. तो इस तरह से हम अपने जीवन के हर पड़ाव में किसी ना किसी ग्रुप में जो है वो रहते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े होने
बड़े होने तक.
तक जैसे भी रहता है. हम कौन सा ग्रुप चूज़ करते हैं, हम अपनी क्लास 10 के बाद जैसे हम कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम चूज़ करेंगे तो वो एक ग्रुप में हम चले गए, किस तरह से हम जाते हैं. तो हमारा जीवन जो है वो हमेशा जो है लोगों के समूह से,
समूह में जुड़ा हुआ
में से
रहता है.
जुड़ा जो है वो हमेशा रहता है. हम अलग अलग तरह के लोगों के साथ जो है वो अपना इंटरेक्शंस करते हैं, बातचीत करते हैं, और जिस तरह के लोगों के साथ हम मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं, बहुत हद तक ये बताता है कि हम किस तरह के ग्रुप के लोगों के साथ या किस तरह के समूह को, हमारी रुचि क्या है और हम किस तरह के लोगों के साथ जो है वो उठेंगे बैठेंगे. तो चाहे वो हम ऑर्गेनाइजेशंस में भी, कई बार आपने देखा होगा फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स जिनका डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, इनफॉर्मल ग्रुप्स जैसे आप जिनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना पसंद करते हैं,
कंपैटिबिलिटी ज्यादा है.
कंपैटिबिलिटी ज़्यादा है. तो आप समझेंगे कि अगर आप अपने ऑफिस में भी हैं तो आप सब लोगों के साथ कंपैटिबल नहीं है, सब
नहीं
लोगों
है.
के साथ बात नहीं करते हैं, आप कुछ ही तरह के लोगों के साथ बात करते हैं, क्योंकि आपकी पसंद और नापसंद किसी से मिलती है, किसी से नहीं मिलती
नहीं
है.
मिलती.
तो अगेन, इनफॉर्मली भी हम ग्रुप बनाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो हमारा वो एक फॉर्मल ग्रुप बनता है. तो हमारा जो जीवन है वो शुरू से लेके अंत तक हमेशा किसी ना किसी तरह से जो है वो ग्रुप में, समूह में जो है, समूह से जुड़ा रहता है.
बिल्कुल.
तो आज भी हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप क्या है, फिर हम ये समझेंगे कि ग्रुप फंक्शन कैसे करता है, किस तरह से वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हम पे क्या इफेक्ट डालता है, उसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पे, डिसीजंस पे और व्यवहार पे, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे. फिर हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप का मतलब हम कब कहते हैं कि दिस इज़ अ ग्रुप इज़ फॉर्म्ड, एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, तो ग्रुप के क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें वो फॉर्म होता है. फिर जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप, कि कई बार जैसे मैंने कहा एक हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं तो वे एक फॉर्मल ग्रुप है, हम पार्क में रोज जिन लोगों के साथ सुबह मिलते हैं और हम कहते हैं कि आप कल आना तो हम भी इसी समय पे आएंगे और हमें उनके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, तो वो हमारा एक तरह का इनफॉर्मल जैसे ग्रुप है. तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की भी बात करेंगे. साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो हम ये करेंगे कि समूह जो होता है, जो ग्रुप होता है, उसका हमारे डिसीजन मेकिंग पे कैसा इफेक्ट पड़ता
इम्पैक्ट.
है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग जब ग्रुप में आते हैं तो हम उत्तेजना में कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो डिसीजंस हम तब नहीं लेंगे जब हम अकेले होंगे,
इंडिविजुअल.
इंडिविजुअल, हाँ,
बिल्कुल
क्योंकि
बिल्कुल.
अब उसके क्या कारण हैं, वो हम क्यों लेते हैं, ग्रुप का क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिहेवियर पे, तो वही सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे. देखिए, जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की कि जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी तरह से, उसी समय से हम एक ग्रुप का एक हिस्सा हो
हो
जाते
जाते
हैं.
हैं. बिल्कुल.
हमने कई बार देखा है, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, जैसे मैंने कहा था कि जो बच्चे हैं वो कई बार क्या करते हैं कि हम जैसे इनफॉर्मल ग्रुप्स कैसे बनाते हैं, कि हम एक क्लास में अगर 10, 15, 20, 25, 30 बच्चे हैं तो हम सबके साथ नहीं बैठते, हमें कुछ ही जो है वो पसंद होते हैं बच्चे, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उन्हीं के एक्टिविटीज़ में हम किसके साथ करना पसंद
हाँ
करेंगे तो वो हम करते हैं,
जी.
हम उन्हीं के साथ खेलना चाहेंगे, उन्हीं के साथ उठना बैठना चाहेंगे. और कई बार ये देखा गया है कि हम लोग लोगों के साथ इसलिए मिलते रहते हैं क्योंकि उनकी उनके साथ बैठना हमें एक बहुत खुशी देता
फील
है,
गुड
और
फैक्टर
फील गुड
हमारे साथ
फैक्टर
आता है.
म्यूचुअली रिवॉर्डिंग
जी
होता है, ना कि
जी
सिर्फ हमारे लिए पर उनके लिए भी जिनके साथ हम बैठते हैं, क्योंकि हमारा सेम लाइकिंग्स होता है. हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप्स में जो लोग होते हैं वो बेसिकली मिलते हैं किसी भी तरह के पर्पस को या गोल को अचीव करने के लिए. वो कोई भी पर्पस हो सकता है. अगर मैं इनफॉर्मली बात करूँ तो जब आप कंबाइंड स्टडीज करते हैं कि कुछ ही बच्चों के साथ बैठ के आप पढ़ते हैं, तो आपका गोल क्या है उस ग्रुप का कि हमको ये वाला टारगेट अचीव करना है, ये वाला हमारे को एग्जाम जो है वो क्रैक करना है. ठीक है. अगर हम फॉर्मल ग्रुप्स की बात करें तो उनका ये रहता है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में हैं तो ये ग्रुप की क्या पॉलिसीज हैं, क्या गोल्स हैं, हमको उनको एक साथ मिलके जो है वो पूरा करना है. चाहे वो किसी आप कंपनी के, मतलब आप यू वर्किंग फॉर सम ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के तरफ आप एज अ ग्रुप जो हो वो काम करते हो. जो रिलेशनशिप रहता है ग्रुप मेंबर्स में वो स्टेबल रहता है काफी समय तक, क्योंकि उनको एक उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो सेम है,
ऑलमोस्ट
सेम है, और उनका गोल सेम होता है, तो वो कुछ समय तक जो है वो काम करते हैं अनलेस अंटिल उनके गोल्स जो हैं और लाइफ के प्रेफरेंसेस जो हैं सेम रहे. उसके बाद ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम लोग ग्रुप का पार्ट है. अगर आप समझें कि मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ तो आप कभी भी उस ग्रुप में नहीं रह पाएंगे. कहने का मतलब ये है कि आप उसी ग्रुप में रहना पसंद करेंगे और उसी ग्रुप में आप ज्यादा टाइम तक स्टेबल रह सकते हैं जब आपको लगे कि आप हिस्सा हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए. जब तक वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आती तब तक आप उस ग्रुप में नहीं रहना चाहते, आप उसे छोड़ देते हैं. जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि वो कलेक्टिवली फिजिकल लेवल पे भी काम करते हैं. फिजिकल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि एक जो कमेटी, जो जैसे हम ऑफिशियल ग्रुप्स की बात करते हैं, हमने एक कमेटी बना दी, तो जो हमने एक मान लीजिए बैंक की कमेटी बनाई वो एक ग्रुप है. जो दो कारपेंटर्स आपस में एक साथ मिलके किसी लकड़ी के टुकड़े को तराश रहे हैं, दे आर वर्किंग इन ग्रुप. इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो फिजिकल लेवल पे जो हैं वो काम करते हैं, और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो हैं हमेशा रहते हैं. ये ग्रुप्स का डायरेक्ट और इमीडिएट कम्युनिकेशन होता है. कुछ भी इनको चाहिए तो बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्किंग टुगेदर एट अ फिजिकल लेवल, वो आसपास है तो वो हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो एक तो ये है कि फिजिकल लेवल पे कलेक्टिवली लोग किस तरह से एक साथ रह के काम करते हैं. जैसे कि मैं और आप इस समय ग्रुप फॉर्मेशन करके हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज अ ग्रुप. हम फिजिकल लेवल पे ये चीज कर रहे हैं. दूसरा आता है कि जो लोग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को शेयर करते हैं उनको भी हम एज अ ग्रुप मेंबर मान लेते हैं. जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के स्टूडेंट्स जो हैं वो एक क्लास में जो है वो दे फॉर्म अ पर्टिकुलर ग्रुप की वी, क्योंकि ऐसा होता है कई बार लोग मानते हैं कि हम वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल. तो हम एक तो हम बोलते हैं ना कि जैसे हमारे तो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड इन द सेंस कि हमने ये बना के रखा है कि मैं आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी. ठीक है. तो अब वो इंडिया में जहाँ पे भी वो कम्युनिटी होगी तो मैं अपने आप को उनका एक मेंबर जो है वो मानूंगी. कोई और किसी आप अपने आप को जैसे मान लीजिए कि किसी एक आप जो कहते हैं ना कि कोई संस्था से आप जुड़ जाते हैं. जैसे आजकल लोग जो हैं बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं तो हम बोलेंगे कि क्योंकि हम ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फॉलो करते हैं तो जितने भी लोग वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फॉलो करते हैं दे फॉर्म अ ग्रुप. तो इसी तरह से अगर आप ये समझें कि ये मेरे रिलीजन का है तो You try to form a group. अगर हम इससे हट के बात करें तो बहुत सारे लोग जिनकी एक जैसा व्यवहार होता है, जैसे मान लीजिए हम बोलें कि जो बच्चे अपने उल्टे हाथ से लिखते हैं क्लास में तो देयर इज वन ग्रुप. वो अपने आप को फील करते हैं कि मैं आई बिलोंग टू दिस ग्रुप. कई बार गर्ल्स जो है वो फील करेंगे कि आई बिलोंग टू दिस ग्रुप. अदर जो जेंडर है वो फील करेंगे कि वी बिलोंग टू दिस ग्रुप. तो कई बार ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जो हम साइकोलॉजिकली सोचते हैं कि क्योंकि मेरा व्यवहार ऐसा है या मैं इस तरह से काम करती हूँ या मैं इस तरह के फैमिली एनवायरमेंट से आती हूँ तो मेरे जैसे आने वाले सभी लोग जो हैं मैं उनके साथ एक ग्रुप में काम करती हूँ. तो ये हम कहते हैं कि जो लोग जो है वो जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होता है वो भी जो ग्रुप फॉर्म करते हैं. ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के लोग हमेशा फेस टू फेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जो हैं वो हमेशा मिले
मिले बिल्कुल.
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं हर एक मेंबर को जो इस ग्रुप का है उसको जानूँ, मैं हर एक इंसान को जानूँ जो कि मेरे कम्युनिटी से बिलोंग करता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट आई वुड ऑलवेज हैव अ फीलिंग दैट आई बिलोंग टू सच अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. या फिर मैं इस जगह से आती हूँ. हम कई बार हम मन में अलग अलग तरह की बिलोंगिंगनेस होती है. मैं पर्टिकुलर स्टेट से आती हूँ तो इस स्टेट के जो भी लोग हैं तो आई फॉर्म अ ग्रुप विद that particular state, people of that particular state या that particular district या that particular place. तो इस तरह से हम अपना group formation, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं hill station से आती हूँ तो इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन है मुझे लगता है वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं
मैं कनेक्ट कर
मैं अपने आप को आराम से कनेक्ट कर पाती हूँ. तो मे बी आई एम नॉट इन डायरेक्ट इंटरेक्शन विद दोज पीपल, लेकिन क्योंकि मैं अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हूँ. तो क्या लाइफ स्टाइल्स रहते हैं, क्या खान पान रहता है, तो वो चीज एक अपने आप में एक बिलोंगिंगनेस का जो अनुभव है वो देती है. तो ग्रुप्स जो है वो फिजिकल लेवल पे भी वर्क करते हैं. जब हम साथ मिलके एक साथ बैठ के किसी चीज को करते हैं, ग्रुप्स जो हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे भी वर्क करते हैं. मे बी इन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब हम काम करें तो हम डायरेक्टली लोगों से नहीं मिलते हैं, बट हमें एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग जो है वो रहती है. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ग्रुप्स का वो होता है इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि मेरा बिहेवियर जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा, उन लोगों को जो मेरे ग्रुप में है मैं किस तरह से बिहेव करती हूँ वो उसको इन्फ्लुएंस करेगा. हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कई बार हम लोग उत्तेजना में आके, क्योंकि ग्रुप में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते
पीछे
हैं
की स्ट्रेंथ देखकर कभी कभी हम कोई डिसीजन ले लेते हैं,
पीछे मुड़के देखते हैं, एनर्जी लेवल हाई रहता है तो हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो शायद हम अकेले होते तो इतना हिम्मत ना करते लेने की. और जो ग्रुप का इंटरडिपेंडेंस है आउटकम में, आउटकम का कहने का मतलब है कि जो भी रिजल्ट ग्रुप का आता है, जो भी आपने जिस गोल के लिए आप अचीव कर रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो शेयर्ड आउटकम होता है. सबको पता है कि एवरीवन हैज वर्कड इक्वली टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल. तो एक शेयर्ड हमारा आउटकम रहता है. दूसरा रहता है, तीसरा रहता है कि टास्क इंटरडिपेंडेंस रहती है. हम ग्रुप में क्यों फॉर्म करते हैं, ग्रुप्स में फॉर्म करना कई बार आसान होता है, वो इसलिए क्योंकि टास्क इंटरडिपेंडेंस होती है. मान लीजिए मैं पढ़ने में अच्छी हूँ तो मैं पढ़ लिख के आपको कुछ चीजें बता पाऊंगी, आप बोलने में ज्यादा अच्छी हैं तो वही चीजें आप एक्सप्रेशन के तौर पे ज्यादा अच्छे से
कलेक्टिव एफर्ट्स हो जाएंगे सब.
तो हम सबका जो टास्क इंटरडिपेंडेंस है वो ग्रुप में हमेशा रहती है. तो ग्रुप जो है एक फिजिकल लेवल पे वर्क करता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे वर्क करता है. ग्रुप का जो है अगर हम बात करें तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो गोल्स में हमेशा रहती है, गोल्स के आउटकम्स में रहती है. बिहेवियर्स ऑफ ग्रुप मेंबर आर इंटरडिपेंडेंट. एंड लास्टली वी डिस्कस्ड जो टास्क इंटरडिपेंडेंस है, कोई किसी काम करने में निपुण है तो उसको वो काम दिया जाता है, कोई किसी काम करने में अच्छा है तो उसको वो काम दिया जाता है. तो एक टास्क इंटरडिपेंडेंस जो है वो हमेशा जो है ग्रुप्स में बनी रहती है. हाँ, ग्रुप ऑपरेट हो, ग्रुप बनता कैसे है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे. पहले अगर हम ग्रुप ऑपरेट करें कि ग्रुप में ऑपरेशन कैसे होता है, काम कैसे होता है, तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं. जैसे आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन किया, फॉर एग्जाम्पल आप आर्म्ड फोर्सेज में जाते हैं तो दैट इज वन ग्रुप. तो आर्म्ड फोर्सेज में आप जाएंगे तो उनके अपने रोल्स हैं, नॉर्म्स हैं और स्टेटस है. पता है कि किसको क्या रोल मिला है, आपका क्या काम है, आपको क्या काम करना है, आप वही काम करेंगे. आप ग्रुप के कुछ नॉर्म्स हैं कि इस जगह पे आपका एक जो है आपको हमने एक रोल दे दिया है. आपका काम है कि आपको हर चीज को एक्सप्रेशन में लेके आना है. मैं सब कुछ लिख के दूंगी, लिखना मेरा काम है, एक्सप्रेशन में लेके आना आपका काम है. तो दैट इज योर रोल, लिखना इज माय रोल. तो दैट मींस हमेशा जब ग्रुप से ऑपरेट करते हैं तो हर एक इंडिविजुअल का ग्रुप में अपना अपना रोल होता है. ग्रुप में काम करने के हमेशा रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइंड होते हैं. हम लोग कहते हैं कि देखिए अब आप हमारे ग्रुप में आ गए हैं, अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ अपने तरीके हैं काम करने के. आप जो पुराने तरीके हैं तो उन तरीकों से ना काम कीजिए, हमारे अपने तरीके हैं काम करने के. तो हमारे रूल्स रेगुलेशंस डिफरेंट हैं, तो नॉर्म्स अलग होते हैं हर एक ग्रुप के. और ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल का एक स्टेटस होता है. स्टेटस का मतलब कुछ लोग जो हैं वो हायर लेवल पे काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मिडिल लेवल पे काम करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो थोड़े नीचे दबके पे काम करते हैं. तो जब ग्रुप्स के ऑपरेशन की हम बात करते हैं कि हाउ डू ग्रुप्स ऑपरेट, तो हर एक इंडिविजुअल के अपने रोल्स डिफाइंड होते हैं कि किसका क्या काम है ग्रुप में. फिर हम लोग बात करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को जो है वो पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे काम करना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हमारे ग्रुप के काम करने का ये तरीका है, तो आपको यही तरीके से काम करना पड़ेगा क्योंकि हम सब ने इन तरीकों को मान के इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है. तो अगर आप नहीं करते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं.
अच्छा.
और हर एक ग्रुप में ग्रुप मेंबर का स्टेटस होता है. अगर आप इसको समझना चाहें तो आप इसको इन एनी टर्म समझ सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, अगर मान लीजिए आप उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में जब आप जाएंगे तो आपका एक रोल होगा कि आप उसके कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर सकते हैं, आप उसके हेड के रूप में भी काम कर सकते हैं और आप मिडिल लेवल पे भी काम कर सकते हैं. तो वो आपका रोल डिफाइंड है. आपको जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनके रूल्स रेगुलेशंस है, आपको उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे काम करना है, आप उससे अलग काम नहीं कर सकते. और तीसरा है कि ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल का एक स्टेटस है, आपका क्या पोजीशन है. आप जब नए नए उसमें गए हैं तो आपका भी इंडक्शन ही हुआ है, तो आप हायर डिसीजंस नहीं ले सकते क्योंकि वो अथॉरिटी किसी और को दी गई है. आपको अथॉरिटी सिर्फ काम करने की दी गई है. तो अलग अलग तरह के लोगों का जो है वो स्टेटस जो है वो डिफाइंड रहता है ग्रुप में. इस तरह से ग्रुप जो है वो ऑपरेट करते हैं. देखिए, ग्रुप ज्वाइन करने के बहुत सारे जो हैं वो रीजंस हो सकते हैं. बेसिकली ग्रुप जो है वो किसी ना किसी तरह की नीड सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग जो हैं वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं.
अच्छा.
जैसे कि आप अगर अपने आप में भी समझना चाहें तो अगर आपने फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन किया है तो वो किसी ना किसी तरह का नीड सेटिस्फेक्शन जो है वो आपको करके दे रहा है. तभी अपने आप व्हाट्सएप पे सर्टेन ग्रुप्स जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वो आपके किसी आप जुड़े रहते हैं लोगों के साथ. ये शायद आपका नीड किसी का ये नीड सेटिस्फेक्शन हो सकता है. किसी का ये नीड सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि मैं जितना ज्यादा फोटो अपना फेसबुक पे डालूंगी तो लोग उतना लाइक करेंगे, तो मेरे को उतना प्लेजर मिलेगा इस चीज से. तो जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वो ग्रुप को ज्वाइन करने के पीछे हमारा पर्टिकुलर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का कोई मकसद होता है. इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम ग्रुप्स जो हैं वो ज्वाइन करते हैं. सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि लोग जो है वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं क्योंकि कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो हम अकेले फुलफिल नहीं अचीव नहीं कर पाते. तो जब हम इंडिविजुअली कुछ गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं तो हम लोग जो है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं. जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अकेले बैठ के स्टडीज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मुझे क्या करना है, तो मैं कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लूंगी जिसपे लोग हमेशा रोज डिस्कशन करते हैं. या फिर मैं अपना कोई करियर जो है वो ढूंढ रही हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि कैसे, अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो मैं क्या करूंगी कि कहीं जाके, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि आप कहीं जाके कुछ कॉन्फ्रेंसेस या कुछ वर्कशॉप्स या कुछ ऐसी इनफॉर्मल मीटिंग्स किसी तरह की अटेंड करोगे, वहां जाके लोगों के साथ अपना नंबर शेयर करोगे और नंबर शेयर करके आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा. तो उस ग्रुप पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर अकेले होते तो आपको नहीं मिल पाती, पर जब आप ग्रुप में हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी. दूसरा होता है कि ग्रुप हम तब ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं हमारा किसी भी तरह का काम करने के लिए. जैसे मान लीजिए यही एग्जांपल जो मैंने दिया कि अगर आप एक ग्रुप में हैं और ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको क्लास 12 का अगर आ, 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 जो है स्ट्रेस हो रहा है एग्जामिनेशन का, तो आप उससे कैसे डील कर सकते हैं, तो ग्रुप पे जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आती जाएगी कि सब बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो बताएंगे और आपस में उनको सॉल्व करने की भी जो इंटरेक्ट करके सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे. कुछ लोग कुछ ऐसे सुझाव देंगे जो शायद हमें नहीं पता कि हम लोगों को नहीं पता कि हम किसके पास जा सकते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, साइंस पढ़ने के लिए, जो हमारी और ज्यादा हेल्प कर सके. बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज वो हमें बता सकते हैं जो शायद मैं अकेले बैठूं तो मुझे नहीं पता चलेगा. तो लोग ग्रुप्स इसलिए भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ग्रुप मेंबर्स के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ओपिनियंस जो है वो हमारे को मिल सकती हैं, जो जो शायद हमारे लिए फायदेमंद भी हों। फिर लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं टू मीट द नीड फॉर सिक्योरिटी, जिसे हमें लगता है कि अच्छा अब मैं इस ग्रुप का मेंबर हूं ना तो आई फील सिक्योर, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक जिसे हम कहते हैं बैकिंग है, मेरे पास एक रिसोर्स है, एक जो कि दैट रिसोर्स विल ऑलवेज स्टैंड बाय माय साइड इफ आई एम इन ट्रबल। तो हम लोग ग्रुप इसलिए भी ज्वाइन करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई ना कोई जो है वो हमारा सहारा बनेगा। फिर जो ग्रुप्स हैं वो हमारे को एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी देने में भी जो है वो मदद करते हैं। जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे जब बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं तो आपको मिलेगा कि मेरी भी एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी है कि मैं इस तरह के इंडिविजुअल के साथ जुड़ी हुई हूँ। कुछ भी हो सकता है, आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, गुरु होते हैं, बाबा जी होते हैं, वट एवर, जिनके साथ भी आप एक मेंटल स्ट्रेस होता है। कई बार क्या होता है कि ये एक आर्टिकल है, ये एक मैं आर्टिकल का जो कोट है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है। उसमें मैंने कहीं देखा था कि कई बार ऐसा होता है इंडिया में कि जो लोग हैं, क्योंकि हमारे में बहुत ज़्यादा ये जो कास्ट सिस्टम है ये काफ़ी चलता है, लेकिन जब लोग ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, किसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो इस सिस्टम से बहुत हद तक अपने आप को अलग कर पाते हैं, क्योंकि नाउ दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट बट नाउ दे फॉर्म एन आइडेंटिटी विद अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो वो जो ग्रुप्स है वो उनको एक पॉजिटिव आइडेंटिटी का जो है वो सेटिस्फेक्शन देता है। तो जो ग्रुप्स हैं वो हमारे को कहीं ना कहीं, नॉट ओनली दिस, अगर आप किसी भी सेक्ट से, किसी भी रिलीजन से, किसी भी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप, चाहे मान लीजिए आप अगर आर्म फोर्सेस में जाते हैं और अगर आर्म फोर्सेस का एग्जाम आप क्लियर करते हैं और आप आर्मी में जाते हैं, तो यू फील दैट आई एम अ पार्ट ऑफ द आर्म फोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेस, तो वो आपको एक पॉजिटिव सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो देता है। तो जो कोई भी हम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं किसी भी तरह के, वो हमारे को पॉजिटिव सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी देते हैं। तो एक तो हम लोग ग्रुप इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो हम अकेले अचीव नहीं कर सकते हैं, तो ग्रुप में हमें वो गोल्स अचीव करने में ज्यादा मदद मिलती है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें लगता है कि ग्रुप मेंबर्स के पास ज्यादा रिसोर्सेज है हमारी मदद करने के। फिर हमें लगता है कि अगर हम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो हमें ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी कि हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, हम अकेले नहीं है, हम एक समूह में है। और लास्ट आता है कि ग्रुप जो होता है वो हमें एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी देने में भी बहुत हद तक हेल्प करता है। और जो ग्रुप के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो होते हैं कोहेसिवनेस, हम हमेशा ये फील करते हैं कि वी बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, तो वो सब लोग इकट्ठे मिलके रहते हैं, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कोहेसिवनेस जो है वो ग्रुप में आती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैम लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं, और आपने ये भी बताया कि हर ग्रुप का अपना अपना कुछ रूल रेगुलेशन भी रहते हैं। या मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर ग्रुप से जुड़ा हुआ मैं प्रश्न पूछूं कि वो क्या डिफरेंट प्रोसेस रहते हैं अलग अलग ग्रुप के, जो ग्रुप फॉर्मेशन के लिए आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं या फिर ज़रूरी होते भी हैं?
देखिए, जब हम ग्रुप फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें हम मेनली फोर स्टेजेस की बात करते हैं। पहली स्टेज आती है ओरिएंटेशन, दूसरा आता है फोकस, फिर आता है रेगुलेशन, और फिर आता है लास्ट में फॉर्मलाइजेशन। तो अगर हम ओरिएंटेशन की बात करें तो ये इनिशियल स्टेज होता है ग्रुप फॉर्मेशन का। इसमें क्या होता है कि हम लोग पोटेंशियल जो भी हम मेम्बर्स हैं, हम लोग पहले ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि इस ग्रुप में रह के हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। पहले तो हम लोग सभी लोग जब ग्रुप बनाने लगेंगे तो वो लोग यही सोचेंगे कि ग्रुप में रहने का फायदा क्या है और नुकसान क्या है। फिर उसके बाद हम लोग ये जो है ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो पोटेंशियलिटीज हैं, मुझ में जो क्षमताएं हैं, वो ग्रुप के गोल को पूरा करने में हेल्प कर पाएंगी या नहीं, मेरा गोल और ग्रुप का गोल कंपैटिबल है या नहीं,
एक दूसरे से।
तो अगर होगा तो हम लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि हम लोग किसी पर्टिकुलर जॉब में आ जाते हैं, फिर हमें लगता है कि मैं आई एम नॉट मेंट फॉर दिस जॉब, क्योंकि ये जॉब के गोल्स डिफरेंट हैं और मेरे डिफरेंट हैं, तो वी आर नॉट एबल टू फॉर्म दैट ग्रुप विद दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि हम कंपैटिबल नहीं हैं, हमारी पोटेंशियलिटीज और ग्रुप की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कंपैटिबल नहीं हैं. तो ये जो है इनिशियल ओरिएंटेशन स्टेज होती है जिसमें हम ये सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे चुनाव करना है, हमारा पोटेंशियल्स ग्रुप के गोल्स के साथ मैचिंग है या नहीं, नहीं है, हम लोगों को इस ग्रुप में रहने का क्या फ़ायदा होगा या क्या फ़ायदा नहीं होगा. इसके लिए लोग हमेशा बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो शुरू में चलता है. मैं जाऊँ इस ग्रुप में जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि ये मुझे कहाँ तक लेके जाएगा, क्या अगर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो क्या ये वाला सब्जेक्ट जो है मेरे गोल को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा, इस तरह से बन सकती हूँ. मैं समाज सेविका बनना चाहती हूँ तो बन सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप ज्वाइन करना है, ये ओरिएंटेशन स्टेज सबसे पहले रहती है. फिर आती है कि जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रहना है टू अचीव अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल, तब आता है फोकस का स्टेज. फोकस का स्टेज होता है कि आपको अब ये फोकस करना है कि अब आप इस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर बन गए हो तो आपको गोल को कैसे अचीव करना है, जो भी ग्रुप का गोल जो है उसको अचीव कैसे करना है. यहाँ पे जो लोग हैं वो उनमें बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा टूवर्ड्स दैट, जो कि हमने शुरू में बताया था वॉट इज़ योर रोल इन दैट ग्रुप. तो ये फोकस जो है वो आपका आ जाता है. आपका काम है कि आपको जो है वो एडवर्टाइजिंग करना है, आपका काम है आपको लिखना है, आपका काम है आपको एक्सप्रेशन देना है. तो ये सब चीज़ें जो है ये सेकंड वाला स्टेज जो आपका फोकस जब आप करेंगे ग्रुप के गोल्स को अचीव करने में तब आएगा. फिर हमारा आता है रेगुलेशन. रेगुलेशन का मतलब होता है कि जब हमारी इंटरेक्शन जो है काफ़ी समय तक होती रहती है और सोशल एक्सचेंज जो है ग्रुप मेंबर्स में लोगों में इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं, तो रोल्स और फंक्शंस जो है वो क्लियरली अब हम कर लेते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पे कोई बॉस नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है. इनिशियल स्टेजेस पे सब लोग एक ही लेवल पे
लेवल पर आते हैं,
सब लोग एक ही लेवल पे आके काम कर रहे हैं. वो है आपका फोकस का स्टेज. जब आप इस स्टेज के नेक्स्ट जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अब आप लोगों ने इतना इतना काम कर लिया है, किस व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, किसने थोड़ा कम किया है, कौन व्यक्ति जो है वो लीडर बनने के लायक है, कौन व्यक्ति जो है वो कुछ अलग तरह की टास्क को लेने के की पोटेंशियलिटी ज़्यादा रखता है. तो जब आपका थर्ड स्टेज आएगा उसमें रेगुलेशन स्टेज आएगा, और वो रेगुलेशन स्टेज में आप ये डिसाइड करते हैं कि किस ग्रुप मेंबर का क्या रोल जो है वो रहेगा. फिर रहता है फॉर्मलाइजेशन स्टेज. फॉर्मलाइजेशन स्टेज में हम लोग नॉर्म्स और रोल्स को फॉर्मली जो है वो डिफाइन कर देते हैं. ये रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन रूल रेगुलेशन में हमारे ग्रुप मेंबर्स काम करेंगे, ये इधर का बॉस होगा, ये सबऑर्डिनेट्स होंगे जो उनके अंडर उनकी लीडरशिप में काम करेंगे. तो ओरिएंटेशन स्टेज जब पहले हम डिसाइड कर रहे हैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, एक बार हमने डिसाइड कर लिया फोकस स्टेज अब मुझे कैसे काम करना है. जब फोकस में हम एक बार अच्छे से इन्वॉल्व हो गए तो रेगुलेशन स्टेज कि अब रेगुलेट कैसे करना है, किस तरह से नॉर्म्स बनाने हैं, क्या करना है. और फॉर्मलाइजेशन में एक्चुअली में वो नॉर्म्स रोल्स स्टेटस सब कुछ बन जाता है. हाँ देखिए वो आगे से आते हैं कि पहले तो हम बात करेंगे कि हम लोग ना कुछ प्राइमरी ग्रुप्स और सेकेंडरी ग्रुप्स में रहते हैं. प्राइमरी ग्रुप्स होता है कि जिसमें हमारी हो सकता है कि हमारी फेस टू फेस अट्रैक्शन जो रहे, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल जो प्राइमरी ग्रुप का रहता है वो रहता है हमारी फैमिली, क्योंकि फैमिली के साथ हम लोग सब इकट्ठे मिलते हैं और प्राइमरी ग्रुप का जो लोगों का कॉमन फेट होता है जिसे हम सबका क्या होगा, हम वी आर ऑलवेज मीटिंग टुगेदर, वी आर वर्किंग फॉर द सेम ऑर्गेनाइजेशन, तो सबका कॉमन फेट रहता है. प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन का हम कह सकते हैं न्यूक्लियस होता है, और ये बच्चों की पर्सनालिटी को शेप करने में बहुत ज़्यादा इसका प्राइमरी ग्रुप का इन्फ्लुएंस रहता है.
अच्छा.
दूसरा रहता है सेकेंडरी ग्रुप. सेकेंडरी ग्रुप में यू मे और मे नॉट बी इंटरेक्टिंग विद द पीपल, जैसे कि अगर मैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की मेंबरशिप ले लेती हूँ, वॉलंटरली है, मेरी मर्जी है, मैं लूँ चाहे ना लूँ. तो इस तरह के जो हम इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स. इसमें हमारी मर्जी होती है कि हम इनका पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं. हम किसी प्रोफेशनल ग्रुप का भी पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स एटसेट्रा. और जो मेंबर्स होते हैं इस तरह के ग्रुप के, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो करें. डायरेक्ट इंटरेक्शन हो भी सकती है और नहीं भी जो है वो हो सकती है. और लोग जो है वो सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो ज़्यादा बनते हैं कि अगर मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ तो मेरा एक स्टेटस आएगा कि आई बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप, मेरी मेंबरशिप है. तो अच्छा आपने उसकी मेंबरशिप ज्वाइन की है,
एक स्टेटस
दिस ब्रिंग्स यू पर्टिकुलर स्टेटस. तो इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं. आपने फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स की बात करी थी, तो वही ग्रुप्स होते हैं जो हमने शुरू में भी डिफाइन किया. फॉर्मल ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे पर्टिकुलर सेट नॉर्म्स हैं, जिसमें हमें पता है कि समय आना है, कैसे बात करनी है, क्या गोल्स हैं. और इनफॉर्मल ग्रुप्स होते हैं जो हम इनफॉर्मली बना लेते हैं
अपनी
सेटिस्फेक्शन के लिए. जैसे अपने फॉर्मल ग्रुप के अंदर हम एक इनफॉर्मल ग्रुप बना लेंगे, जैसे हमारा एक हायरार्की है, हमारा एक डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट एक फॉर्मल ग्रुप है. लेकिन उस फॉर्मल ग्रुप में जो चार लोग इकट्ठे बैठ के ज्यादा टेस्ट मिलता है, जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो एक इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो बन जाता है. देखिए जब हम इंडिविजुअल बिहेवियर पे क्या इफेक्ट रहता है ग्रुप्स का इंडिविजुअल बिहेवियर पे उसकी बात करते हैं, तो उसमें एक हम बहुत एक शुरू से मैंने सबसे पहले जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी भी ये कहा था कि ग्रुप्स में कई बार हम लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो अगर हम अकेले हों तो हम नहीं लेंगे. इसे कहते हैं रिस्की शिफ्ट. रिस्की शिफ्ट मतलब कि आप कुछ ऐसा ऐसे बहुत सारे दुनिया में डिसीजंस लिए गए हैं इन ग्रुप्स जिनके बहुत ड्रास्टिक जो है कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं. और वो ऐसे डिसीजंस थे जो लोगों ने ग्रुप में रह के जो थे वो लिए, और उसके जो 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 रेपरकशंस हैं वो बहुत समय तक लोगों को झेलनी पड़ती है. वो इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में जब हम लोग कुछ डिसीजन लेते हैं तो उसमें एक हम टर्म की बात करते हैं सोशल फैसिलिटेशन. सोशल फैसिलिटेशन का मतलब है कि लोग देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का जो है कई बार हम पे इम्पैक्ट रहता है. तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जैसे जब भी मैं ग्रुप में कुछ डिसीजन लूंगी तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे अकेले के ऊपर नहीं है, वो स्प्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो मुझे पता है कि जब स्प्रेड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अगर कुछ गलत भी हो जाएगा तो अकेले मुझ पे बात नहीं आएगी. तो एक ये बहुत बड़ा रीजन जो है वो रहता है कि हम लोग कुछ ऐसे डिसीजंस जो है वो ले लेते हैं जो हम अकेले होते तो नहीं लेते. डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, डिफ्यूज्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इसलिए हम हमेशा रिस्की डिसीजंस जो है वो ग्रुप्स में जो है वो लेते हैं. जैसे कि मैंने सोशल फैसिलिटेशन की बात कही तो मैंने कहा कि सोशल फैसिलिटेशन का मतलब है कि दूसरे लोगों की जो प्रेजेंस है वो आपके परफॉर्मेंस पे किस तरह से इंटरैक्ट कर रही है. अगर आप इजी टास्क करते हैं तो क्या होता है कि जो लोग जब आपके सामने प्रेजेंट रहते हैं, टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको लगता है कि आप बिकॉज इट इज़ एन ईजी टास्क तो आप बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि सब लोग आपके सामने प्रेजेंट हैं तो वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी जाती है. लेकिन उसी के विपरीत अगर कोई टफ टास्क है तो क्या होता है कि लोग भी प्रेजेंट होते हैं, टास्क भी टफ है, तो कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि आप टास्क पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करें या लोगों पे कॉन्सेंट्रेट, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये नहीं. इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड, आप किस तरह का दिमाग में दे रहे हैं. तो इस तरह के जो इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे बिहेवियर पे हमेशा ग्रुप्स के जो है वो रहते हैं.